मुद्रा एवं मूल्य। 16वीं शताब्दी में स्पेन अपने दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों से भारी मात्रा में चांदी लाता था। इस काल में स्पेन का साम्राज्य नीदरलैंड, उत्तरी इटली व जर्मनी के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ स्पेन की चांदी मुद्रा सरकारी ऋण और प्रशासनिक शोधन के माध्यम से भी सारे यूरोप में फैल गई। इस तरह खरीद फरोख्त के लिए सारे यूरोपीय देशों के बीच एक समान मुद्रा प्रचलन में आ गई। इसके कारण 16वीं शताब्दी में व्यापार को प्रसार का खूब मौका मिला। इससे 16वीं शताब्दी में उपज व निर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़े और उनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। अगर 16वीं शताब्दी के अंत तक पेरू की चांदी की खाने तथा दास प्रणाली बंद किए जा रहे थे और स्पेन में चांदी आना कम होने लगा, चांदी से लदा आखिरी जहाज स्पेन में 1607 में पहुंचा। इसके कारण 17वीं शताब्दी में सभी यूरोपीय देशों में चांदी की आमद में भारी गिरावट आई। हर सरकार ने सिक्कों में ताबा मिलाना शुरू किया। तत्कालीन विद्वान और आज के इतिहासकार भी चांदी व ताबे की मात्रा को अर्थव्यवस्था का सूचक मानते हैं। 1600 के मूल्यों को आधार माना जाए, अर्थात उन्हें 100 की गिनती दी जाए, तो 1650-54 तक स्पेन व इटली की मुद्रा का मूल्य 35% अर्थात 65 और पोलैंड की मुद्रा 60% अर्थात 40 से भी अधिक गिर गई थी। जैसा कि नीचे दिए नक्शे से स्पष्ट होगा, उत्तर पश्चिमी यूरोप के देशों की मुद्रा में चांदी के अंश में बहुत कमी आई। यह एक कारण है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप का ऋण लेने देने साहूकारी का काम एम्स्टर्डम और एक हद तक लंदन के बैंकों के हाथ में आ गया। इससे पहले जेनोवा और इटली के बैंकर यूरोप में सारा बड़ा लेन देन संभालते थे। वस्तुओं के मूल्यों में नीदरलैंड को छोड़कर बाकी यूरोप में गिरावट आई थी। नीचे दिए ग्राफ में बताया गया कि 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के प्रमुख शहरों में गेहूं के दामों की क्या प्रवृत्ति रही। गेहूं अर्थव्यवस्था का अच्छा सूचक है, क्योंकि कृषक इस अनाज के जरिए ऋण व करों की अदायगी करता है। अंतः यूरोपीय व्यापार में भी गेहूं बहुत महत्वपूर्ण वस्तु था। इन कारणों से गेहूं के मूल्य में घटा बढ़ी से हम अर्थव्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इंग्लैंड में मूल्यों की मंदी का दौर केवल 1650 तक चला, जिसके बाद मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई। यूरोप के अन्य भागों में यह दौर ज़्यादा समय तक रहा, इससे उभरना भी इतना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए 17वीं सदी के अंत तक मूल्यों में ऐसी घटा बढ़ी लगी रही जिससे मालूम पड़ता था कि आर्थिक स्थिति संभल नहीं सकी है। मूल्यों के घटने का अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा वह एक समान नहीं था। हमें यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि मूल्य गिरने से उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा सिर्फ उन जगहों पर हुआ जहां विकास के लिए गुंजाइश नहीं थी, जैसे स्पेन में गेहूं की बुआई रोक दी गई और किसानों ने व्यापारिक फसलों को छोड़कर केवल अपनी खपत के लिए मोटे अनाज बोना शुरू किया। दूसरी ओर इंग्लैंड में घटते मूल्यों से और ही प्रतिक्रिया हुई। उत्पादन रोकने के बजाय उत्पादन की ऐसी तकनीकें अपनाई गईं कि गेहूं पशुपालन व कपड़ा उत्पादन का स्तर और भी बढ़ गया। मूल्यों में परिवर्तन का असर क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर है कि उस समय के आर्थिक सामाजिक ढांचे में विकसित तकनीकें अपनाने की कितनी शक्ति है।